नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है। ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा किया। और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से कहा है कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिशकियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने, आवाजाही और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा करने और नाविकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत आज विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का पर्याय है।
हम रोड्स, रेलवे, पोर्ट और एयरपोर्ट्स का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। साथ ही शिप बिल्डिंग, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, क्रिटिकल मिनरल्स और बायोटेक जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में नई क्षमताएं तैयार कर रहे हैं। इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड, 2 लाख के अधिक स्टार्टअप और 120 से अधिक यूनिकॉर्न्स के साथ भारत आज ग्लोबल सॉल्यूशंस का हब बन रहा है।
श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का दृढ़ समर्थक है।
ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो। और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडप में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। भारत की अध्यक्षता में सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। सम्मेलन का शुभारंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, आर्थिक चुनौतियां, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़े हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसी सहभागिता आवश्यक है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील हो। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का प्रयास सदस्य देशों के बीच सहमति कायम करना और साथ ही मौजूदा व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता को मजबूत करना है। भारत का लक्ष्य ब्रिक्स को एक अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए एक रचनात्मक शक्ति के रूप में सुदृढ़ करना है। सुपर्णा के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। 2 दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण कल रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक दिल्ली के मुख्य रास्तों पर यातायात परिवर्तित और नियंत्रित किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू करेगी। अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। भाजपा ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।
आज IMF ने अपनी रिपोर्ट में 7.8% ग्रोथ रेट को सही पाया है। IMF ने भारत की इकोनॉमी के रिजिलियंस की तारीफ की है। तो कांग्रेस के नेताओं को यह बताना जरूरी है कि जब आप सरकार में थे तो ब्रिक्स के मामले में भारत की आपने क्या स्थिति बना दी थी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जन विश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज बूथ स्तरीय अधिकारियों को मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग का जीवंत प्रतिबिंब बताया। गुजरात के अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया, संविधान, चुनावी कानूनों और आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही संचालित होती है। भाजपा की पंजाब इकाई भाजपा दा नारा नशा मुकाना सारा के नारे के साथ राज्य में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं की शुरुआत करेगी। 4 चरणों में होने वाली ये 13 दिन की यात्रा नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का प्रयास करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 18 सितंबर को पठानकोट जिले के माधोपुर से पहली यात्रा को रवाना करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलडबरू मध्यम में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे सऊदी अरब का तेल निर्यात प्रभावित हो सकता है। सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हौसी के कब्जे वाले प्रमुख बंदरगाह शहर मोखा के हवाई अड्डे पर हवाई हमले किए। उधर ईरान सरकार ने सऊदी अरब और हौसी विद्रोहियों के बीच बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। यूरोपीय आयोग ने आज भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर और इसे लागू करने के लिए यूरोपीय परिषद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किया। इस समझौते को अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताया जा रहा है। यूरोपीय परिषद की मंजूरी मिलने पर यह भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा। प्रख्यात तमिल वक्ता सोलोमन पापैया का आज तमिलनाडु के मदुरई में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। श्री पापैया अपनी हास्यपूर्ण शैली और विशिष्ट मदुरई तमिल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और HPV संक्रमण और HPV से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। HPV टीकाकरण पहल फरवरी 2026 में शुरू किए गए राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है। और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।